पंचम स्कंध पांचवा अध्याय भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। श्लोक संख्या 26। पवितव्यानि सर्वाणि मध्येष्णतया व्यभवद्भिः चराणि भूतानि सुता धुवाणि संभावितव्यानि पदे पदेवो विविक्तदृग्भिस्तदुहारणम् मे। निषाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हे पुत्रों, तुम्हें चराचर जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूं, प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए। इस प्रकार तुम मेरा आदर करो। इस श्लोक में विविक्त दृग्भिः अर्थात ईर्ष्या रहित शब्द का प्रयोग हुआ है। सभी जीवात्माओं में श्री भगवान का वास होता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम। ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में स्थित हैं। वे प्रत्येक परमाणु में व्याप्त हैं। वेदों का कथन है, ईशावास्यम इदम सर्वम्। परमेश्वर सर्वत्र स्थिति है, सर्वत्र स्थित है, और जहां कहीं भी वे स्थित हैं, वह उनका मंदिर है। हम दूर से मंदिर को प्रणाम करते हैं, इसी प्रकार से समस्त जीवों को प्रणाम करना चाहिए। यह इस विश्व देवतावाद के सिद्धांत से भिन्न है, जो प्रत्येक वस्तु को ईश्वर मानता है। हमें दरिद्र नारायण के मूर्ख उपासकों की भांति, नारायण तो धनी तथा निर्धन दोनों में विद्यमान है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि नारायण केवल दरिद्रों या निर्धनों में वास करते हैं, वे सर्वत्र हैं। परम भक्त प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह कुत्ता या बिल्ली हो क्यों न हो, सम्मान प्रदान करता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कथन है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। यथार्थ से विनीत साधु, विद्या तथा विनय युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल मतलब कुत्ता भक्षक को समान दृष्टि से देखता है। इस समदर्शिनः शब्द से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि जीव तथा ईश्वर एक समान है, वे सदैव पृथक पृथक हैं। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर से भिन्न है, अतः विविक्त दृक् समदृक् के आधार पर दोनों की तुलना करना भूल होगी। भगवान भले ही सर्वत्र रहना स्वीकार करें, किंतु उनका पद बड़ा है। श्रील मध्वाचार्य पद्म पुराण से उद्धरण देते हुए विविक्त दृष्टि जीवनाम धिष्णितया परमेश्वरस्य भेद दृष्टि ही, अर्थात जिसकी दृष्टि विमल है और जो ईर्ष्या रहित है, उसे ईश्वर प्रत्येक जीवात्मा में स्थित रहकर भी समस्त जीवात्माओं से पृथक दिखता है। वे और आगे भी पद्म पुराण से उद्धरण देते हैं, उपपादयेत परमात्मनं जीवेभ्यो यह पदे पदे भेदे नैव न चैतस्मात् प्रियो विष्णुस्तु कश्चन। जो जीवात्मा तथा परमेश्वर को पृथक पृथक देखता है वह उसे परम प्रिय होता है। पद्म पुराण में ही कहा गया है, यो हरेश्चैव जीवनाम भेद वक्ता हरेः प्रियः। जो यह उपदेश देता है कि जीवात्मा परमेश्वर से पृथक है वह भगवान विष्णु को परम प्रिय होता है। अनुवाद को दोहराइएगा। कृष्ण महाराज ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। इसी तरह से हरेक पिता को अपने पुत्रों को उपदेश देना चाहिए और इसी तरह से पुत्रों को पिता के वाणी का पालन करना चाहिए। और ऐसे पिता हो और ऐसे पुत्र हो तो फिर समाज में कोई उत्पात नहीं होगा, सभी सुखी अवस्था में रह पाएंगे। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश महाराज ऋषभदेव दे रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण चर और अचर दोनों तरह के प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। इसलिए हमें हर एक प्राणी का समादर करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए और इस तरह से किसी भी प्राणी से हमें ईर्ष्या कभी भी नहीं करनी चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल बात है। कई बार लोग कहते हैं फिलॉसफी ये तो बहुत पुस्तकीय बात हो जाती है, लेकिन इस पुस्तकीय ज्ञान को कैसे अपने जीवन में उतारना इसके लिए यहां पर हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। जब अगली बार हमारे मन में किसी भी प्राणी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भावना होती है तो हमें इस उपदेश को याद करना चाहिए कि जिस प्राणी से या जिस मनुष्य से या जिस भक्त से हम ईर्ष्या कर रहे हैं उसके हृदय में भी भगवान विराजे हैं। वो भी शरीर है जिसके प्रति हम द्वेष कर रहे हैं, वो शरीर भी भगवान की संपत्ति है, भगवान वास कर रहे हैं वहां पर। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि यहां पर किसी भी मंदिर में, जैसे राधा गोकुलानंद मंदिर में भगवान की अर्चा विग्रह है जो कि भगवान से अभिन्न है, इसलिए हम कहते हैं कि मंदिर भगवान का निवास स्थान है। और आते जाते लोग बाहर से भी क्यों न हो मंदिर को प्रणाम करके जाते हैं। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गाड़ी से भी गुजर रहा हो, दूर से मंदिर देखता है, प्रणाम करता है, सिर झुकाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मंदिर है, भगवान का निवास स्थान है, इसलिए विशेष स्थान है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां कि भगवान उपस्थित नहीं है, हर एक अणु में है। जैसे कि यहां ब्रह्म संहिता में बताया गया है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, हर एक प्राणी के हृदय में तो है ही लेकिन साथ साथ हर एक अणु में भी विराजे हुए हैं भगवान। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां हमें सर नहीं झुकाना चाहिए? लेकिन एक दृष्टि से हर जगह हर अणु को हम सर झुकाते जाएंगे तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए कम से कम जब मंदिर देखते हैं तो सर झुकाते हैं, क्योंकि वहां पर भगवान जो कि उपस्थित हैं उनको प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन हर अणु में भगवान को देखना थोड़ा कठिन होता है जब तक कि आदमी का हृदय पूरी तरह से शुद्ध न हो। लेकिन भगवान को मंदिर में देखने के अलावा इससे अगला जो कदम है वो ये है कि हर एक प्राणी के हृदय में हम भगवान को देखें। वो उतना कठिन नहीं है जितना कि हरेक अणु में भगवान को देखना। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः, मैं हरेक प्राणी के हृदय में स्थित हूं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, और उनके हृदय में स्थित होकर मैं सबको ज्ञान देता हूं, विस्मृति देता हूं और स्मृति देता हूं। मैं मार्गदर्शन करता हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानाम यंत्रारूढानि मायया। भगवान श्री कृष्ण हरेक प्राणी के हृदय में स्थित हैं और वहां स्थित होकर हरेक प्राणी का मार्गदर्शन करते हैं, उनके भ्रमण को नियंत्रण करते हैं। इस तरह से भगवान को परमात्मा कहते हैं, क्योंकि आत्मा के साथ वो हमेशा रहते हैं और उन दोनों का भेद करने के लिए भगवान को संबोधित किया जाता है परमात्मा शब्द से। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मैं मेरा रूप हरेक प्राणी के हृदय में स्थित होता है वो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, और मेरे इस रूप को परमात्मा कहते हैं। परमात्मेति च अपि उक्तः। उसी तरह से श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि भगवान का साक्षात्कार करना है तो इसके तीन स्तर हो सकते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शक्यते। पहली बात, हम निराकार को जान सकते हैं। निराकार स्वरूप के ऊपर है भगवान का परमात्मा स्वरूप, और उसके ऊंचा, उससे ऊपर है भगवान श्री कृष्ण। इस तरह से ये शब्द परमात्मा महत्वपूर्ण है। इससे हम जान सकते हैं कि भगवान में और आत्मा में अंतर है, नहीं तो परम शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता। केवल कहा जाता कि वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। तो यहां पर प्रभुपाद जी टीका कर रहे हैं तात्पर्य में उन लोगों की, जो कि जीव और भगवान को एक समझते हैं, एकत्व। ये मायावाद दर्शन है। लेकिन आत्मा और परमात्मा शब्द में भेद ये है परम शब्द का। इसका मतलब है कि भगवान भी आत्मा की तरह आध्यात्मिक है, लेकिन वो परम है, हम परम नहीं है। ये जो कथन है अहम ब्रह्मास्मि, इसको लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि इस वाक्य का अर्थ ये है कि हम सब भगवान हैं, हम ब्रह्म हैं। हम ब्रह्म अवश्य हैं, मतलब हम आध्यात्मिक वस्तु हैं। हमारा तत्व जो है वो आध्यात्मिक है, लेकिन हम परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म केवल भगवान श्री कृष्ण है। हम केवल ब्रह्म हैं, भगवान परब्रह्म है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। तो वो परम ब्रह्म है, हम केवल ब्रह्म है। उपनिषदों में भी बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा दो पक्षियों के समान है जो कि एक वृक्ष के डाली पर बैठे हुए हैं। ये शरीर एक वृक्ष के समान है और हमारे हृदय में ये दो पक्षी बैठे हैं, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा आत्मा के या जीव के हरेक कार्य का, हरेक विचार का साक्षी है। वो मार्गदर्शन करता है, वो अनुमति देता है, और इस तरह से जीवात्मा अपने कार्य कर सकता है। अगर परमात्मा नहीं होते हमारे हृदय में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम हर अवस्था में, हर चीज के लिए, हर समय भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। जीव की क्षमता केवल ये होती है कि वो इच्छा करे, लेकिन इच्छा की पूर्ति करने के लिए जीव में कोई सामर्थ्य नहीं है। केवल भगवान की इच्छा से ही जीव अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। इस तरह से परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के हरेक जीव के साथ अनादिकाल से साथ दे रहे हैं। जब से कि जीव इस भौतिक जगत में गिर पड़ा और जब तक कि जीव इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवान के धाम में लौटकर नहीं जाएगा, तब तक भगवान इस परमात्मा रूप में जीव के साथ में ही रहेंगे, कभी जीव का साथ छोड़ेंगे नहीं। परमात्मा ये भी एक भगवान का विशेष रूप है जो कि शाश्वत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जीव भगवान के धाम में चले जाता है तो फिर परमात्मा यही रह जाते हैं। भगवान ने परमात्मा का रूप विशेष केवल भौतिक जगत के लिए धारण किया है। इस तरह से जीव के साथ में भगवान हमेशा रहते हैं। हालांकि जीव भगवान को भूल जाता है, कभी कभी भगवान का साथ छोड़ना चाहता है, भगवान से अलग होकर भोग करना चाहता है, कभी कभी भगवान से द्वेष करता है, भगवान के अस्तित्व को भी, लेकिन भगवान कभी भी जीव से द्वेष नहीं करते। भले जीव भगवान से द्वेष करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जीव से द्वेष नहीं करते हैं। इसलिए तो वो अपनी कृपा हमेशा जीव को देते रहते हैं। देखिए ये कितनी अनुकंपा है, ईर्ष्या रहित होने की चरम सीमा है। अगर हम किसी को मदद करना चाहते हैं, उसके ऊपर अनुकंपा करना चाहते हैं, और अगर वो हमारे शरण में आ जाता है, हमारे प्रति बहुत अनुकूल भावना, आदर भावना रखता है, तो हमें अच्छा लगता है उस व्यक्ति की सहायता करने के लिए। लेकिन वही व्यक्ति अगर कल हमसे ईर्ष्या करने लगे, हमारे बारे में दो अपशब्द बोलने लगे, और इधर उधर जाके हमारी निंदा करने लगे, और हमारे मुंह पे भी आके हम कहने लगे कि कोई गलत शब्द कहने लगे, तो हम तुम्हारे लिए कर रहे हो, लेकिन तुम आके हमें गाली दे रहे हो, हमें क्या गाली गलौज कर रहे हो, हमारे बारे में निंदा कर रहे हो, मेरी हमसे ईर्ष्या करते हो, तो हम मदद करना बंद करेंगे, हम नहीं करेंगे मदद तुमको। ये स्वाभाविक है जीव के लिए, क्योंकि जीव बहुत छोटा है, जीव का हृदय इतना उदार नहीं होता। लेकिन भगवान को देखिए, जीव उनसे अनादिकाल से ईर्ष्या करते आया है। अनादिकाल से ऐसे इतने सारे जीव हैं जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, लेकिन फिर भी भगवान इसको बुरा नहीं मानते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, वो अपने माता पिता को मारता है, बाल खींचता है, कुछ चीज उठा के उनके ऊपर फेंक देता है, क्या बहुत कुछ चीजें करता है, लेकिन माता पिता गंभीरता से नहीं लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान जो है जीव के ईर्ष्या को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान को सब जगह देखता है, जिसकी ये दृष्टि हो जाती है, वो भी भगवान की तरह ईर्ष्या रहित हो जाता है। फिर वो समझता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति मुझे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण स्थित है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाद समदर्शनः। भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक विद्वान का, एक वास्तविक जो पंडित है, उसकी परिभाषा करते हैं। जो विद्या से युक्त है, जो विनीत है, वो हर प्राणी को, चाहे वो एक विद्वान ब्राह्मण हो, चाहे वो एक हाथी हो, गाय हो, कुत्ता हो, या कुत्ता खाने वाला हो, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। तो उनकी समान दृष्टि क्या है? यहां विविक्त दृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में विमल दृष्टि से, निर्मल दृष्टि से देखना और ईर्ष्या रहित होना, ये जानना कि सब कुछ आध्यात्मिक तत्व से उत्पन्न हो रहा है और हरेक चीज में भगवान विराजे हैं। इस तरह से जो विद्वान होता है पंडित समदर्शिनः, उसकी समान दृष्टि किस चीज में होती है कि वो देखता है कि चांडाल में, कुत्ते में, ब्राह्मण में, हाथी में, सब में भगवान परमात्मा के रूप में है। ये सारे शरीर जो है ये भी मंदिर हैं। जिस तरह से हम इस मंदिर का सम्मान करते हैं, हम आदर करते हैं, उसी तरह से हर एक शरीर भी भगवान का मंदिर है, क्योंकि वहां पर परमात्मा विराजे हुए हैं। मंदिर तो बहुत बड़ा है और फिर भी गर्भगृह है जहां पर भगवान के विग्रह होते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर मंदिर है और जो हमारा हृदय है वो गर्भगृह है। तो जैसे हम यहां आके ऑल्टर सेवा करते हैं, वैसे भी यहां ऑल्टर सेवा होनी चाहिए, हृदय की सेवा। हमें जानना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। मृगारी की कथा में हम देखते हैं कि मृगारी जो कि बहुत भयंकर क्रूर शिकारी था पहले और पशुओं को आधा मार डालता था, नारद मुनि की कृपा से उसके अंदर ऐसा परिवर्तन हुआ कि बाद में वो चींटियों को भी मारना नहीं चाहता था। हिंसा भावना से पूरी तरह से मृगारी मुक्त हो गया और ईर्ष्या के दृष्टि से नहीं देखा उन प्राणियों की वजह से, उन प्राणियों की ओर। वैसे अगर कोई भी व्यक्ति हमारे मार्ग में आ जाता है, हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में अगर कोई बंधन बन जाता है, अड़चन बन जाता है, तो संसार में देखा जाता है कि लोग उस व्यक्ति को उखाड़ देना चाहते हैं। जैसे हम कोई जंगली पेड़ को हमारे खेत से उखाड़ना चाहते हैं, तो लोग अपने रास्ते से ऐसे लोगों को उखाड़ देना चाहते हैं ताकि उनका रास्ता इंद्र तृप्ति के लिए साफ हो जाए। ये ईर्ष्या भावना होती है, ये व्यक्ति मेरे मार्ग में अड़चन बन रहा है, उसको निकालो, लोग ईर्ष्या करते हैं इस तरह से। लेकिन जो भक्त होता है वो चींटी को भी समान सम्मान से उसके साथ व्यवहार करता है। जैसे मृगारी ने, उसने कपड़ा लेकर धीरे से हल्के से उन चींटियों को अलग कर दिया। अगर जल्दी से करते तो खतरा होता है कि शायद वो चींटी मर भी जाए, तो हल्के से कपड़े से, कोमल कपड़े से अलग कर दिया, अलग रास्ते में रख दिया उनको। तो ये भक्ति का प्रभाव होता है। जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने लगता है तो ईर्ष्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी यहां ऐसे लोगों की चर्चा भी करते हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। उनके मन में गलत फहमी है कि समान दृष्टि का मतलब यह है कि सभी को भगवान से समान समझना, कि सभी लोग भगवान हैं। ये मायावाद दृष्टि जो है ये हम अलग अलग मायावादी सन्यासियों में भी देखते हैं। इसलिए जब एक मायावादी सन्यासी दूसरे मायावादी सन्यासी को मिलता है तो एक दूसरे को वो संबोधित करते हैं, नमो ओम नमो नारायणाय, एक दूसरे को नारायण कहते हैं, हम आपका नमन करते हैं, आप जो कि नारायण है। फिर दूसरा भी पहले का नमन करता है, हम भी आपको संबोधित, आपको सम्मान करते हैं, आप जो कि नारायण है। और उनके शास्त्र में बताया जाता है, दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायण भवेत। दंड ग्रहण मतलब दंडा कब ग्रहण करते हैं, सन्यास लेने से। जब न्यायवादी सन्यास, एक दंडी सन्यास ग्रहण करता है व्यक्ति, नारायण भवेत, वो नारायण बन जाता है। ये इनका कथन है, क्योंकि सन्यासी मतलब मायावादी संप्रदाय में वो समझना चाहे कि प्राय वो मुक्त हो गया इस भौतिक बंधन से, मुक्ति की अवस्था उसने प्राप्त कर ली। और मुक्ति मतलब क्या, भगवान बन जाना। मायावादी दर्शन ये है कि हम सब भगवान हैं, केवल यही है कि अज्ञान की वजह से, माया की वजह से हम इस बात को जानते नहीं हैं। जब मुक्त हो जाएंगे तब इस बात को जानेंगे। इसलिए नर नारायण भवेत ऐसा। कहने लगे दरिद्र नारायण का मतलब क्या है? क्या केवल दरिद्र के अंदर नारायण है? ये क्या दरिद्र ही नारायण है? ये लोगों में भ्रांति रहती है कि हमारे लिए तो गरीब ही भगवान है। इतनी खिचड़ी है सब जगह लोगों के मन में। लोग ये नहीं सोचते कि आज वो गरीब है, कल अमीर हो गया तो क्या वो भगवान होना बंद हो जाएगा? फिर वो भगवान नहीं रहेगा? तो ये दरिद्र नारायण के बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान दरिद्र में भी निवास करते हैं और अमीर में भी निवास करते हैं। भगवान सर्वत्र निवास कर, सब जगह है वो। इसलिए हर एक व्यक्ति को हमें सम्मान से देखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे नक्सलाइट वगैरह, वो अमीरों से द्वेष करते हैं। कई लोग होते हैं जैसे जो कैपिटलिस्ट, जैसे अमेरिका वो वगैरह, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उससे द्वेष करते, उसे नीचा समझते हैं। जैसे आजकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा जाता है कि जो लोग जिन देशों के पास ज्यादा धन है वही राज कर रहे हैं और गरीब देशों से द्वेष करते हैं। इस तरह से अलग अलग दर्शनों में, राजनीति के दर्शनों की दृष्टि से देखा जाए तो एक समाज दूसरे से द्वेष करता है। ये गरीब है इसलिए द्वेष करते हैं, वो अमीर है इसलिए उनसे द्वेष करते हैं। लेकिन चाहे गरीब हो या अमीर हो, सब जगह भगवान निवास करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी से भी द्वेष न करें। खास करके जब भक्तों का समाज आ जाता है तो इसके बारे में तो हमें और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर भगवान श्री कृष्ण एक चींटी में भी हैं, एक नास्तिक में भी हैं, एक राक्षस के हृदय में भी हैं, तो क्या वो एक भक्त के हृदय में नहीं है? ऐसा भक्त जो कि प्रयास कर रहा है उसी भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, कम से कम उतना तो प्रयास वो कर रहा है। बाहर के लोग तो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, उनको भी हमें सम्मान देना चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। तो जो भगवान हरि के भक्त हैं उनके प्रति हमारा कितना आदर भाव रहना चाहिए। तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि भक्तों के बीच में ये ईर्ष्या भावना, द्वेष भावना कभी निर्माण नहीं होनी चाहिए। और हमें याद रखना चाहिए कि न केवल भगवान इनके हृदय में विराजे हैं, इनका हृदय मंदिर है, लेकिन उनकी आत्मा भी अभी भगवान के शरण में जाने की तैयारी में है। तो जिस रूप को हम सामने देख रहे हैं ये भी मंदिर है, इसलिए तो हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने का उद्देश्य क्या है? शरीर के 12 जगह में हम तिलक लगाते हैं ये बताने के लिए कि ये शरीर भी एक मंदिर है भगवान का। और हर स्थान को के ऊपर जब हम तिलक लगाते हैं तो भगवान का कोई ना कोई नाम लेते हैं, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः इत्यादि। हाँ, साथ साथ में फिर भगवान के अलग अलग नाम लेकर उन स्थानों का संरक्षण भी करते हैं हम। किंतु कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कंठी माला पहनते हैं, हम तिलक पहनते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं और अपने आप को भी याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा शरीर ये भगवान का मंदिर है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसे किसी चीज का भक्ष नहीं करना चाहिए जो कि अभक्ष है, जो वर्जित है, और ऐसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो कि हमें मंदिर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी शरीर मंदिर है। तो अगर यहां हम डरते हैं कोई बुरा काम करने के लिए तो इस शरीर से हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम जानेंगे कि ये शरीर भी मंदिर है तो हम बहुत सावधान रहेंगे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन ये केवल एक दृष्टि की बात है, चेतना भावना की बात है। इसलिए कृष्ण भावनामृत संघ, प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे कि ये दो शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण और भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। और खास करके प्राणियों में और भक्तों में हमने देखा तो कभी भी हम ईर्ष्या नहीं करेंगे और हम भक्ति में अच्छी तरह से आगे प्रगति करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
हरे हरे।
हरे कृष्णा। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? वैसे अगर कम मात्रा में कॉकरोच वगैरह हो तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, उनको भी आपके घर के ऊपर अधिकार है। ये केवल हमारा घर नहीं है, भगवान का घर है, जिसमें थोड़े बहुत प्राणी उधर उधर से आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम स्वच्छ रखेंगे घर तो काफी हद तक ये समाधान हो जाएगा। लेकिन समस्या ये होती है कि हम कितना भी स्वच्छ क्यों ना रखें, परिसर स्वच्छ ना हो तो ये प्राणी आते रहेंगे। यहां से जैसे यहां पर हम मंदिर कितना भी स्वच्छ क्यों ना रखें, नीचे से ऊपर वो गोडाउन है, सब चूहे ये वो सब आते रहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जहां तक हो सके, जितना हो सके, हमें अपना घर मंदिर जो भी है वो साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, जब ये पशु प्राणी इत्यादि आते हैं तो उनको मारने के बजाय हमें ऐसे कोई तरकीब सोचनी चाहिए जिससे कि वो दूर रहे। और जब बिल्कुल उपाय ना हो, जहां स्वास्थ्य के लिए या हमारे और किसी चीज बहुत खतरा हो, तब ठीक है, अपने चीज को बचाने के लिए हम कुछ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन साधारणतः ऐसे मच्छरों को, कॉकरोचों को बिल्कुल मार डालना, ये एक अच्छी पॉलिसी नहीं है भक्त के लिए। ये कम से कम होना चाहिए। और हमारा खुद का अनुभव यह है कि जिस दिन से हमने मच्छरों को मारना बंद कर दिया, नहीं तो हमेशा यूं 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 करके जाते थे, जिस दिन से हमने मच्छरों को बांधना मारना बंद कर दिया तो मच्छर हमको कम तंग करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भी परमात्मा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो काटते ही हैं, उनका अधिकार जितना हमारे कर्म के अनुसार उनको खून पीना है वो पीना है, लेकिन मच्छरदानी से इत्यादि से हम अपने आप का संरक्षण कर सकते हैं जहां तक हो सके। थोड़ा बहुत हाथ हिला दिया वो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए, भले वो कॉकरोच और मच्छर का क्यों ना हो। ठीक है, हर सांप खतरनाक नहीं होता है। हाँ, वैसे शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे जो जहरीले जो पशु प्राणी आते हैं उनको मारने में कोई पाप नहीं है, बल्कि श्रीमद् भागवत में प्रहलाद के संदर्भ में बताया जाता है कि जो साधु होते हैं वो ऐसे जहरीले पशुओं से, जैसे बिच्छू और सांप, इनको मारने से साधु लोग प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब जगह बिच्छू ढूंढ कर मारने जाए, अगर कोई आए तो हम उनको दूर हटा सकते हैं। कई सांप हैं जो कि मनुष्य के लिए लाभदायक हैं, खास करके किसान के लिए, लेकिन सांप देखकर ही हम घबरा जाते हैं, सब मारने ही लग जाते हैं। अगर शेर सामने आए, आक्रमण करे, हाँ हमें बचाने का अपने आप को तरकीब उठाना ही चाहिए। अगर हमारे पास कुछ भी तलवार हो, चाकू हो, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे नहीं कि शेर इसमें भी भगवान है, हमारे खा जाएगा हम बैठेंगे, नहीं, अपनी सुरक्षा करनी चाहिए हमें। वैसे कोई दूसरा मनुष्य भी आएगा हमारे ऊपर आक्रमण, तो अगर अपनी सुरक्षा के लिए हमने किसी की हत्या की तो वो पाप नहीं माना जाता, खून नहीं माना जाता, क्योंकि वो आतताई है, अग्रेसर। अलग अलग तरह के आतताई माने जाते हैं। आतताइयों की हत्या करना ये पाप नहीं है। कोई हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करेगा तो हमारी सुरक्षा के लिए उसकी हत्या हो जाए तो ये हमारे लिए कोई दोष नहीं। ठीक है, जंगम, चर मतलब जैसे पक्षी हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं जो चलते फिरते हैं। चर, चरना, चर धातु संस्कृत में मतलब हिलना। अचर मतलब जो चलते नहीं है, जैसे पेड़ हैं, वैसे ये अचर प्राणी है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या है, उसके गलत कार्यों को भगवान क्यों अनुमति देते हैं? भगवान केवल अनुमति देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान इस कार्य को पसंद करते हैं। अनादि काल से भगवान केवल जीव की इच्छा को पूर्ण करते आए हैं। क्यों? क्योंकि जीव के साथ स्वतंत्रता है, इच्छा की स्वतंत्रता, जिसमें भगवान कभी भी दखलंदाजी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जीव और भगवान का संबंध है प्रेम का, और प्रेम तभी प्रेम हो सकता है जबकि जो प्रेम कर रहा है वो स्वेच्छा से कर रहा हो, स्वतंत्रता का उपयोग करके कर रहा हो। जैसे अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि बंदूक दिखाकर किसी से प्रेम नहीं किया जाता, मेरे से प्रेम करो बंदूक दिखाते हैं, नहीं होगा। स्वेच्छा से ही जो किया जाता है वो प्रेम है। तो जब जीव अगर स्वेच्छा से प्रेम कर चाहता है भगवान से, तो मतलब है उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रेम करने के लिए। अगर स्वतंत्रता न हो तो वो प्रेम कैसे करेगा, प्रेम का मतलब नहीं होगा। और स्वतंत्रता अगर प्रेम करने के लिए दी जाती है, इसका मतलब है कि स्वतंत्रता प्रेम नहीं करने के लिए भी दी जाती है, और दोनों तरह की इच्छाओं की पूर्ति भगवान को फिर करना पड़ता है। तो इसलिए चाहे कोई अच्छा काम हो या बुरा काम हो, अपने अपने इच्छा के अनुसार, कर्मों के अनुसार भगवान उन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बताते हैं कि ऐसे कर्म करने से ये फल मिलेगा, वैसे कर्म करने से वो फल मिलेगा। फिर हमें निर्णय करना है कि ये कार्य हमारे लिए उचित है या नहीं है। इस तरह का फल हमें ऐसे कार्य करने से मिलेगा। तो जो लोग गलत काम करते हैं उनको ज्ञान मिलना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि ऐसे कार्य करने से मुझे क्या नतीजा होगा, इसका क्या परिणाम होगा। और जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान अवस्था में उसे काम करेगा तो उसको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन में चाहिए कि हम ज्ञान को प्राप्त करें, अच्छी तरह से समझे कि कौन से कार्य निषिद्ध हैं, वर्जित हैं, कौन से कार्य अच्छे हैं, किस तरह के कर्म करने से कैसे फल हमें मिलेगा। ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। मनुष्य समाज में जन्म लेकर व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के इस कानून को जान ले, जैसे कि इस देश के नागरिक को चाहिए कि वो देश के कानून को जान ले ताकि वो कोई गुनाह नहीं करे। ठीक उसी तरह से हर एक मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान के कानून को जान ले ताकि वो कोई पाप नहीं करे। और कोई प्रश्न? आज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय।